نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہم سب کو اس بات کے سننے کے لیے آنے کی اور بیٹھنے کی توفیق دی یہی دعا کریں گے کہ اس وقت کا ہم بہترین حق ادا کر سکیں سبھی کو معلوم ہے کہ رمضان کی آمد آمد ہے اور رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جب بھی آتا ہے اپنی فیلنگ ضرور دے کے آتا ہے کتنے مہینے آتے ہیں سال میں اور آ کے چلے جاتے ہیں شاید ہی ہمیں ان کے نام بھی پتہ ہوں ویسے تو پتہ ہوں گے لیکن اچانک اگر کسی سے پوچھا جائے کہ آج کون سی تاریخ ہے یا کون سا مہینہ ہے تو نہیں یاد رہتا ہاں رمضان سے پیچھے والا یاد رہتا ہے شعبان کی وجہ سے اگلا یاد رہتا ہے شوال کی وجہ سے یا زیقعد ذی الحج باقی بیچ کے بعد میرے حال ذی الحج کے بعد تو ہم پھر سو جاتے ہیں لیکن رمضان کا مہینہ واقعی اپنے اندر برکتیں لے کے آیا ہے اے منتھ آف کلٹیویشن اے منتھ آف ہارویسٹنگ نیکیوں کو بونے کے مہینے ہیں اگر اس مہینے میں ایک بیج ڈال دیا پورے سال میں اس کی فصل کاٹ سکیں گے اور جس نے ان دنوں کی قدر نہ پائی وہ اس کسان کی طرح ہاتھ ملتا رہ جائے گا کہ جس نے وقت پہ بیج نہیں ڈالا گندم کا پودا سخت سردی میں لگتا ہے اور اس کی فصل سخت گرمی میں کٹتی ہے اگر کوئی موسم کی سردی سے ڈر کے دانہ نہ ڈالے اور موسم کی گرمی دیکھ کے کاٹے نہ تو پھر فاقے اور بھوک اس کا نصیب ہوں گے اللہ تعالیٰ یہ مہینہ ہمارے اوپر کیوں بھیجتے ہیں تاکہ 11 مہینے جو ہم نے اپنی زندگی کے گزار دیے ایک بار پھر احتساب کر لیں کہ آخر ہمارا رب چاہتا کیا ہے میں آپ کے سامنے آج ایک حدیث رکھنا چاہوں گی بڑی خوبصورت روایت ہے ویسے تو احادیث کوٹ کی جاتی ہیں لیکن کسی حدیث کو بھی لفظ بہ لفظ پڑھنا اور اس میں سے اپنے لیے عمل کی باتیں نکالنا یہ ایک بہترین عمل ہے اور خوبصورت اور اس کی لذت بھی ملتی ہے اور میں آپ سب کو دعا بھی دوں گی کہ آپ کی زندگی میں ایسے موقع آتے ہی رہیں کہ جب آپ مختلف طریقے سے اللہ کے کلام اور اس کے رسول کی باتوں کو گہرائی سے جا کے پڑھیں چلتے پھرتے ایک علم لے لیا جاتا ہے اٹھتے بیٹھتے انفارمیشن مل جاتی ہیں کوئی سی ڈی سنی کوئی کہیں بات کان میں پڑی لیکن طالب علم بن کے بیٹھنا اور اس کو لکھنا حقیقت میں اس کی لذت ہی اور ہے یہ وہی کیفیت ہے جس پہ ہوتی ہے وہی جانتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے وَأَن سلمان رضی اللہ عنہ قال حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آپ کے صحابی تھے خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری یوم من شعبان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطاب کیا اور فرمایا پہلی بات تو اس میں دیکھتے ہیں کہ ایک اچھا داعی دین یا لوگوں کی ہمدردی رکھنے والا آنے والے وقت سے پہلے ان کو تیار کر دیتا ہے اپنے رمضان کا انتظار نہیں کیا بلکہ اس سے ہی چند دن پہلے ایک پروگرام رکھا خطبہ رکھا درس رکھا جب لوگ آ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یا ایہا الناس اے لوگو یہاں بھی غور کیجئے گا یا ایہا الذین آمنو نہیں صرف ایمان والے نہیں یا ایہا الناس حالانکہ آپ کے سامنے جو لوگ بیٹھے تھے وہ سب مسلمان تھے شاید کوئی دوسرا آتا ہی ہو لیکن ایک اپنائیت کا انداز ہے نا غیروں کو اپنا بنانے والا انداز ہے کیوں دور ہو आओ तो सही, एक दफ़ा चखो तो सही, करीब से देखो तो सही, क्या पता तुम्हारा दिल खुल जाए। तो इंसानियत को खिताब है, या यूहन्नास कद अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम। आपने फरमाया कि ए लोगो, तुम पर एक अजीम शान और बाबरकत महीना साया फगन हो गया है। इत्तला दे दी कि कद अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम मुबारकुन शहरुन, एक ऐसा महीना जो बाबरकत भी है और अजीम भी है। सवाल पैदा होता है कि और आपका इस ज़ाहिर है कि मुराद इसमें रमज़ान ही से है, तो यहाँ रमज़ान को शहरे अजीम कहा गया क्यों? इसलिए कि इंसानियत को अजमत मिली थी तो इस महीने में मिली थी। शहर रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, हिदायत का इंतज़ाम हुआ था तो वो इस महीने में हुआ। अल्लाह ताला ने मक्का फ़तह करवाया तो इस महीने में करवाया। अगर बदर हुई जो यौमुल फुरक़ान थी तो वो भी इसी दिन में हुई। तारीख़ को टटोलते जाइए, रमज़ान के महीने में बहुत सारे वाक़ियात हुए। हम तो हाथ तोड़ के बैठ जाते हैं कि नहीं, अब रमज़ान है, हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लम ने इन्हीं महीनों में जिहाद भी किए, इन्हीं महीनों में अपने सफ़र भी किए। आज लोग परेशान होते हैं, आप रमज़ान में सफ़र करेंगे? आप रमज़ान में सफ़र करते हैं तो क्या वो हमारी तो गाड़ियाँ इतनी लग्जूरियस हैं? हमारे पास तो ठंडे गर्म का इंतज़ाम है। जैसी शान से हम लोग सफ़र करते हैं, उस दौर में तो तसव्वुर भी नहीं था, ऊँटों पे, घोड़ों पे, लेकिन आप जाते थे। मिशन से नहीं रुके, ईमान वाले की ज़िंदगी होती भी ऐसी है। वो मौसमों की धूप छाँव से काम करना या काम छोड़ नहीं देता, वो हर मौसम में फल देने वाला होता है। शजरतिन तैयिबतिन मुबारकत, कैसा कि जो हर मौसम में फल देता है। तूती उकुलहा कुल्ला हीन बिइज़्नि रब्बिहा, सूरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक आयत में आता है कि ईमान वाला एक सदाबहार दरख्त होता है। वो मौसमों का इंतज़ार नहीं करता नेकी करने के लिए, वो एक इक्विवेलेंट होता है। आप उसको गर्मी में देखें वो वैसे ही दिखेगा, सर्दी में देखें तो भी वैसे ही होगा, किसी खुशी के मौके पे उस पर निगाह पड़ जाए तो वैसे ही होगा, और किसी गम के मौके पे होगा तो वैसे ही होता है। ये एवर ग्रीन कैफियत कब मिलती है? जब दिल के अंदर ईमान आता है, जब अल्लाह के वादों पे यकीन आता है। तो अल्लाह ताला के नबी लोगों को मुबारक देते हैं कि देखो तुम पे साया फगन हो गया। लफ्ज़ अज़ल्लकुम कितना खूबसूरत है, सोचते मेरे जहन में तो अम्ब्रेला आ जाती है, एक बहुत बड़ी खूबसूरत सी छतरी है और वो आपके सर पे आ गई। ऐसे नहीं लगता कि रमज़ान का महीना एक ठंडी छांव है? भाग भाग के इंसानियत थक चुकी होती है दुनिया के पीछे, अल्लाह ताला इस महीने में बिठा देता है, चलो कुछ कर लो। बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है इस महीने में अपनी मसरूफियत कम कर देते हैं, जॉब से छुट्टी ले लेते हैं, बेकार मशगलें छोड़ देते हैं। तो वाकई ये महीना एक ऐसा महीना है जो इंसान को अपनी रहमतों के साए में लेता है। फरमाया ये कैसा है कि फ़ी ही लैलतुन खैरु मिन अल्फ़ी शहर, इसके अंदर एक रात ऐसी है जो 1,000 रातों से बेहतर है। लैलतुल कद्र की तरफ इशारा है, आखिरी अशरे की ताक रातों में से कोई एक रात, 21वीं भी हो सकती है और 29वीं तक किसी भी दिन हो सकती है। बाज़ रिवायात में आता है कि घूमती रहती है, कभी एक होती है कभी दूसरी होती है, बाज़ कहते हैं कि नहीं एक ही होती है हर साल, वही है लेकिन हमसे छुपा ली गई, लेकिन हकीकत यह है कि वो एक रात उम्मत के नेकियों के मौके छोड़ने का कफ़ारा है। रिवायात में आता है कि कुछ लोगों ने इस चीज़ का शिकवा किया था कि अल्लाह के नबी सल्लम, पहले दौर के लोग उनकी तो उम्रें बड़ी लंबी थी, कई कई 100 साल जीते थे, जब उन्होंने इतने 100 साल जिए तो इतने साल नमाज़ें भी तो पढ़ी होंगी ना, इतने साल के रोज़े और इबादात तो होंगी। हम उम्मत मुस्लिमा, हमारे तो हमारी तो उम्रें बहुत छोटी हैं, तो हमारे साथ क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है? उनको लंबी उम्रें दी, उसकी वजह से नेकियां बढ़ गईं, हमें उम्र थोड़ी दी तो हमारी नेकियां कम रह गईं। तो उस पे ये आयत नाजिल हुई थी कि शहर रमज़ान जो उसमें आप पढ़ते हैं ना सूरह कद्र में, कि इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरु मिन अल्फ़ी शहर, कि तुम एक रात कर लो तुम्हें मैं 1,000 रातों की नेकियों की के बराबर कर दूंगा। अल्लाह के ख़जानों में कोई कमी थोड़ी है। लेकिन अफसोस की बात है कि मौका मिलने के बावजूद भी कई लोग उसकी शान से और उसकी बरकतों को समेटने से महरूम रह जाते हैं। हम सबको कोशिश करनी है और नियत भी करनी है कि इस साल अगर मौका मिला तो आखिर की 10 रातों को जागना है इंशाल्लाह। पिछले साल जब हमारे पास दौरे कुरान या रमज़ान का जो कोर्स था तो उसमें लास्ट 10 डेज़ में हमने एक कोर्स शुरू किया था मदर्स ऑफ बिलीवर्स का, शायद आप में से किसी को इत्तेफाक हुआ हो। उसमें हम हिस्ट्री में से कुछ माओं की कहानियाँ पढ़ते थे। लोग सोचते थे नाम सुन के कि शायद हम नबी सल्लम की वाइफ्स की बातें करेंगे, लेकिन पहले दिन के लेक्चर में मैंने उनको बताया कि नहीं, कौन है मदर्स ऑफ द बिलीवर्स? आप हैं, आप हैं, आपको बिलीवर्स की माएँ बनना है। उसमें हमने बच्चों की तरबियत के वाक़ तरीके, कैसे बच्चों के अंदर मुजाहिदाना सोच रखें, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया कि इस साल के कोर्स में फिर हमें शामिल करना पड़ा है कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 10 रातें जो आखिरी होंगी उसके अंदर, या मेरा तो इरादा इस दफ़ा हर साल हर रात जागने का है, इसी बहाने कुछ इंसान कर लेता है, लेकिन बहरहाल उस रात की कदर कीजिएगा। किसी ने पूछा था कि लैलतुल कदर कौन सी होती है, तो कोई अच्छे मूड में बैठे थे कहने लगे, हर वो रात लैलतुल कदर है जिसकी तुम कदर पहचान लो। हम पहचानते नहीं हैं तो वो भी गुजर जाती है। इसको लैलतुल कदर कहने की 3 वजूहात आती हैं। एक तो जो भी बता दिया आपको कि लैलतुल कदर यानी वो बहुत ही कदर वाली रात है, इसी तरह कदर का लफ्जी तर्जमा होता है अंदाज़ा करना। सही रिवायत से ये मिलता है कि अगले पूरे साल की प्लानिंग उस रात में होती है, किसने मरना है, किसने जीना है, किसका क्या मामला होगा, हमारी तकदीर के फैसले होते हैं। हमारे यहाँ अमूमन मारूफ है ना, 15 शाबान को पत्ते लगते हैं और पत्ते झड़ते हैं, तो पत्तों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पूरे साल की प्लानिंग लैलतुल कदर में होती है। किसको कितना रिस्क मिलना है, किसको जॉब से ले ऑफ होना है, किसको बेटा मिलना है, किसकी बच्ची की मंगनी होनी है, क्या होना है, इस रात में होता है। इस नाते से भी अगर आप देखें कि इंसान जाग के अल्लाह ताला से दुआ करे कि अल्लाह इस आने वाले साल को हमारे लिए खुशियों और बरकतों वाला कर दे, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला दुआओं को कबूल करेंगे। इसी तरह कदर इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि कदर का लफ्जी माना होता है तंग, तंगी। वमन कुदिर अलैहि रिज़्क़ुहु, कुरान पाक में तो तंगी, जैसे हम कहते हैं ना हाथ तंग है, तो फिर इसको लैलतुल कद्र क्यों कहते हैं? इसकी वजह मुफस्सरीन बताते हैं कि उस रात आसमान से इतने फरिश्ते उतरते हैं अल्लाह की रहमतें लेके कि उनकी कसरत की वजह से जगह तंग होने लगती है। बहुत सारी निशानियाँ उसकी अल्लाह के नबी सल्लम ने हमें बताई कि ठंडी रात होती है, कूल होती है। उस दिन चूंकि फरिश्ते आसमान पे उतरे होते हैं, तो जब सुबह का अगले दिन का सूरज निकलता है तो सूरज की शुआएं नहीं होती, क्योंकि उनके बीच में फरिश्ते आए होते हैं। फिर बाज़ जगह आता है उस रात जानवर नहीं भौंकते, और इस तरह की बातें कोशिश करनी है कि उसको पाएं। क्या लैलतुल कदर दिख भी जाती है? जो हमारे यहाँ एक मारूफ बात है, फ़लाँ ने रोशनी देखी, फ़लाँ को कोई आवाज़ आई, देखिए अल्लाह ताला जो दिखाना चाहे दिखा दे, क्या बड़ी बात है। ना दिखाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं, किसी को ना दिखे तो वो ये सोच ले कि मेरी तो इबादत कबूल नहीं हुई, ऐसी बात नहीं है। किसी को दिखा दे और वो इस फख्र में आ जाए कि बस हमें पता चल गया अब मैं तो नेक हो गया, नहीं। मुझे खुद अच्छी तरह याद है कि हमारी नानी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे और ख़ताओं को माफ़ करे, अब मतलब अल्लाह तो बहुत ही इबादत गुजार थी, और एक दफ़ा जब रमज़ान की रातों में कर रही थी इबादत तो कुरान पढ़ रही थी, उनकी आदत थी, एक मुसल्ला था उनका, उस पर बैठ के पढ़ती थी, तो एकदम कहती हैं कि जैसे टार्च की लाइट होती है बिल्कुल बारीक सी, तो कोई बाहर जैसे किसी भी जगह से, उनको नहीं पता, कह रही मैं कुरान पढ़ रही थी तो कुरान के ऊपर वो टार्च आ गई, बिल्कुल जैसे कोई देख रहा है। फिर उसके बाद कहती हैं वो वहाँ से घूमी और इनके घुटनों पे, घुटनों का अक्सर दर्द रहता था इनको, ज़ाहिर इस बुढ़ापे में हो जाता है, तो घुटनों पे दोनों पे जैसे पूरी घूमी, फिर दूसरे पे घूमी, इस तरह घूम के फिर कहती एकदम गायब हो गई। अब ज़ाहिर है कि उन्होंने अपने शऊर से देखा, अल्लाह ही बेहतर जानता है अल्लाह ने उनको क्या दिखाया, लेकिन ये है कि उस रात की वाकई इबादत जो है इंसान के दिल को सुकून देती है। कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी आते हैं और वो मुसाफा करते हैं ऐसे लोगों से कि जो उसमें अल्लाह ताला से बख्शिश की दुआएं मांगते हैं। एक छोटी सी मिसकॉन्सेप्शन इस रात के नाते से लोगों के जहन में कि अगर हमने इसमें पूरी रात में से अगर 1 मिनट भी सो गए तो हमारी इबादत नहीं हुई। हमारे यहाँ ऐसी बात है ना कि बस सुबह जाग रहे हैं, जाग रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ना जागे तो इबादत नहीं, ऐसा नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मसनून अमल है वो यही है कि आप इशा की नमाज़ के बाद थोड़ी देर सो जाते थे, फिर जब दूसरा पहर रात का शुरू होता, जैसे हमारे हिसाब से रात के 2 बजे 3 बजे, फिर उठते और फिर फजर तक जागते थे। और ख़ास तौर पे जो सहरी के करीब का वक्त है वो ज़्यादा दुआओं की कबूलियत का, तो अल्लाह ताला तौफीक दे अगर आप सब भी जागे गए तो थोड़ा वक्त शुरू में सो जाएँ। इंसान की बस कुदरत नहीं है इतनी, खुलिकल इंसानु दईफा, इंसान कमज़ोर पैदा किया गया। हम सो शुरू में जाग लेंगे और जो आखिर का वक्त होता है फिर वो इंसान उगने लगता है, या कुछ बोल रहा है तो मुंह से कुछ और निकल जाता है। तो इसलिए बीच में थोड़ा सा अगर सो जाते हैं तो इंशाल्लाह वितर आप छोड़ सकते हैं। तरावी का भी तरीका ये कर सकते हैं कि 4 तरावी आप शुरू में पढ़ लें जमात के साथ, यानी पहले तो फ़र्ज़ पढ़ेंगे, सुन्नतें पढ़ लें, चाहे 4 तरावी अगर आप किसी भी मस्जिद में पढ़ रहे हैं कुरान पूरा कर रहे हैं तो उनके साथ पढ़ें, 4 तरावी छोड़ दें, या 2 पढ़ लें तो 6 छोड़ दें, या 6 पढ़ लें तो 2 छोड़ दें, फिर जो छोड़ी हुई है ना उसको फिर आखिरी हिस्से में पढ़िए। हमारे यहाँ एक रिवायत शबीना की डल गई, पूरी पूरी रात कुरान पढ़ा जाता है और एक बंदा तो नहीं पढ़ता, तो कई लोग पढ़ते हैं, तो ये भी मसनून नहीं है। जिस तरीके से ऐसा किया जाता है, इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लम के दौर में नहीं हुआ था, लेकिन ये है कि आप अगर थोड़ा सो जाएं फिर उन्हीं 2 रकअतों को लंबा कर लें। हमारे यहाँ एक आम बात हो गई कि दीन के लिए भी नापते हैं, बालिश्तों से नापते हैं, हाँ इतने नफिल पढ़े, 100 नफिल पढ़ूंगी, फलां कहता है मैं 10 10 कुरान पढ़ने हैं रमज़ान में। खुशू नहीं, खुजू नहीं, आप जितनी मर्ज़ी लंबी बात करते रहें, बात क्या है थोड़ी हो और मुख्तसर हो। आप कहें जी मैं लैलतुल कदर में जागूं यानी ताक रातों में, तो क्या करूं, कसरत से कुरान पढ़ें, दुआएं मांगें और क़याम करें। हम लोग एक दफ़ा पाकिस्तान में इतिकाफ़ बैठे थे, तो हम लोग जितने भी लोग थे वो सब ये करते थे कि 4 फर्ज पढ़ के मस्जिद में चुके थे, फिर तरावी भी होती थी, 4 रकत पढ़ के सो जाते, मतलब सुनते थे, बाकी जो पारा होता था वो बैठ के सुन लेते थे अपने अपने हुजरों में। फिर जब आखिरी हिस्सा होता था रात का, तो उस वक्त सारी ही खवातीन उठती थी और उनमें से एक हाफिज़ा भी थी, तो फिर बाकी जो 2 या 4 तरावी थी फिर वो पूरा पारा पढ़ती थी। बल्कि उसमें यह भी हो सकता है कि आप एक अलग कुरान शुरू कर सकते हैं जो आपको 10 रातों में पूरा करना है, तो आप 3 पारे पढ़ लें, हाथ में देख के पढ़ लें, अगर हिफ्स नहीं किया हुआ कोई बात नहीं है, आप अपने हाथ में कुरान पाक पकड़ के पढ़ें। और मैं सोचती हूँ कि ऐसे मौक़ों पे जो इज्तमाई इबादत है वो बहुत फ़ायदा देती है, इंसान दोस्तों के साथ मिलके जाग लेता है और बात थोड़ी बीच में होती है, या अगर उठता बैठता इंसान तो उससे एक माहौल बन जाता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला कहते हैं कि ये वो महीना है कि जिसके अंदर एक रात आने वाली है जो खैरु मिन अल्फी शहर, 1,000 महीनों से बेहतर है। 1,000 महीनों को ज़रा गिन के कोई बताए कितनी होंगे, 1 महीने में 30 रातें और 1,000 महीनों में कितनी रातें होंगी, इसका पूरा हिसाब बनाया हुआ है मुफस्सरीन ने कि ये एक रात की इबादत तकरीबन इंसान की बाज़ दफ़ा पूरी उम्र की ज़िंदगी की रात, एक औसत दर्जे की उम्र बन जाती है एक इंसान की जो सिर्फ इस एक रात की इबादत करे। और आप देखिए कि इतने मुख्तसर से वक्त में भी इंसान अगर 5 भी नहीं जागता, नहीं कहता नहीं वो पता चल जाए जो है वही जागेंगे, 5 ही जागेंगे, फिर कभी कभी चांद देखने पे मसले आ जाते हैं, तो वो एक उस दिन ताक बना रहा होता है तो दूसरा उस दिन जुफरात बनाता है, प्रॉब्लम्स उठते हैं हर वी हर साल। लोग इतने फ़ोन करते हैं जब ऐसे मौके आते हैं, बताएं अब हम कौन सी पे जागें, एक जमात कहती है आज ताक है तो दूसरी के हिसाब से कल है, और आप देखते हैं कि एक घर के कुछ लोगों का रोज़ा होता है और आधे लोग ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं, तो फितनों के दौर में ऐसा हो जाता है। लेकिन आपका और हमारा फिर अमल क्या हो, आप आखिरी 10 रातें जाग लें, जिसके मुताबिक आप रोज़े रख रहे हैं ना, पहली बात तो ये कि आप उसके मुताबिक ताक रात रखें, जिस शहर में या जिस मुल्क में आप रहते हैं उसके मुताबिक ताक रात होगी, ये नहीं कि आप यहाँ हैं और आप पाकिस्तान की रातों को करें, फिर तो आपको दिन में जागना पड़ेगा। तो लिहाजा 10 रातें जाग लें, नहीं है तो जिस हिसाब से आपने चांद देख के शुरू किया था तब करें, क्योंकि अल्लाह ताला शक की इबादत कबूल नहीं करते, जो भी काम करें पूरे यकीन से करें। इस तरह की मुश्किलात में पड़ने की बजाय इंसान एक सुन्नत तरीके को फॉलो करे और इंशाल्लाह उसी में फिर सहूलत है। फिर फरमाया वक़ियाम लैली ही ततवुअन मन तकर्रब फीही बी खसलत मिन अल खैर कान का मन अद्द फरीदतन फी मा सवाहू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो रात कैसी है कि जिस यानी इस महीने की रातों के क़याम को, जिसको हम लोग तरावी कहते हैं, इस महीने की रातों का क़याम अल्लाह ताला ने नफिल करार दिया। इससे क्या पता चल रहा है कि तरावी पढ़ना बहुत अजर की बात है बहुत उसका अजर है लेकिन फ़र्ज़ नहीं है। बाज़ दफ़ा कुछ लोग इसको इस हद तक फ़र्ज़ करार देते हैं कि उस दिन फिर रोज़ा ही नहीं रखते जिससे पहली रात उन्होंने तरावी नहीं पढ़ी होती। पहली बात याद रखिए कि तरावी और रोज़े का आपस में कोई रब्त नहीं है। रोज़ा दिन की इबादत है, तरावी रात की इबादत है। मसलन कुछ हालात ऐसे हैं कि जिसमें आपको रोज़े की रुख्सत है, आप ना रखें, मसलन सफ़र पे हैं, आप रोज़ा नहीं रख रहे, बीमार हैं, लेकिन आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ आप नमाज भी पढ़ सकते हैं, तरावी के अहतमाम में तो पढ़ लें। बाज़ लोग इस छोटी छोटी चीज़ों पे उलझते हैं कि अच्छा अब रोज़ा तो हम नहीं रख रहे तो क्या तरावियाँ भी ना पढ़ो। जैसे कुछ औरतें दूध पिलाती हैं, मुर्दियाँ हैं, बच्चों को नर्सिंग करती हैं, अब रोज़ा मना है तो क्या वो तरावियाँ भी ना पढ़ें? ये तो एक नेकी से तो रुके दूसरी से खुद ही महरूम हो गए। तो ऐसा नहीं करना, रोज़ा रख लें, दोनों ही काम करें तो वेल एंड गुड, दोनों में से एक कर लेते हैं तो भी ठीक है। यानी मीन को इसका दूसरे पे फ़र्क नहीं पड़ता। कभी किसी रात तरावी नहीं पढ़ सके तो अगले दिन के रोज़े पे उसका कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। फिर आपने फरमाया कि जो शख्स इसमें कुर्ब इलाही की नीयत से कोई नेकी करता है, इसे दीगर महीनों में एक फ़र्ज़ अदा करने के बराबर समझा जाता है। और जो शख्स इसमें एक फ़र्ज़ अदा करता है, गोया कि उसने बाकी महीनों में 70 फ़र्ज़ अदा किए। सुभान अल्लाह, नेकियों की सेल है, जितना लूट सके लूट लें। किसी को नहीं पता कि अगला साल हमने देखा कि नहीं देखा। जब भी रमज़ान आता है या उसके आने के दिन करीब होते हैं तो मैं अपने तसव्वुर में ख़ानदान के लोगों को, मिलने जुलने वालों में से कुछ लोगों को सोचती हूँ। कुछ लोग थे लास्ट रमज़ान में हमारे साथ, आज नहीं है। आज हम हैं, कल हो सकता है कि लोग हमारी बातें करेंगे। इसलिए इसको मौका इसका उठाना है और फ़ायदा लेना है। एक की बजाय 70, आप देखिए बाय वन गेट 69 फ्री। फिर भी लोग ना करें, फिर भी हम इसकी कदर ना करें तो क्या किसका कसूर है? एक नफिल एक फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है। कितने ही फ़र्ज़ छुटे हुए हैं ज़िंदगी में अनजाने में, नहीं पता। अगर इस महीने में हम नफिल अदा करेंगे तो वो इंशाल्लाह हमारे फ़र्ज़ों को पूरा कर देंगे। लेकिन नीयत नहीं करनी कोई के पिछली ज़िंदगी के, सिर्फ ये है कि नेकियों में भागो, तेज़ी करो, आगे से आगे जाओ, अल्लाह ताला कबूल कर लेगा इंशाल्लाह ताला। फिर आपने एक बड़ी प्यारी बात कही इस महीने के बारे में, फरमाया वहुव शहरो सब्र, ये सब्र का महीना है। व सब्रु सवाबुल जन्ना, और सब्र का सवाब जन्नत है। रमज़ान को सब्र का महीना कहा गया, शहरो सब्र है ये। सब्र की जो तीन बड़ी किस्में होती हैं उसमें एक ये भी है कि रोज़ा भी सब्र है। किस चीज़ का सब्र है? अमूमन हम रोज़े को सिर्फ खाने पीने तक महदूद रखते हैं, हालांकि अगर आप देखें तो रोज़ा आँखों के सब्र का नाम है, रोज़ा कानों के सब्र का नाम है, दिल के सब्र का नाम है, इंसान के पेट के सब्र का नाम है, उसके दिल के अंदर उमड़ने वाले जज्बात के सब्र का नाम है, हाथों का सब्र, कानों का सब्र, हमारी जुबान ने ही रोज़ा नहीं रखना, हमारे जिस्म के एक-एक उस ने रोज़ा रखना है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया था कि मल्लम यदा कौल जूरी व अमिल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतन अई यदा शराबहु व तआमहु। जिसने झूठ रख के, जिसने रोज़ा रख के झूठी बात का करना और उस झूठ की ज़िंदगी गुजारना नहीं छोड़ा, तो अल्लाह को इसकी कोई परवाह नहीं कि चाहे वो खाना छोड़ दे या पीना छोड़ दे। तो इसलिए रोज़ा सिर्फ खाने का नहीं, और माजरत के साथ हमने खाने का भी नहीं रखा, सिर्फ टाइम चेंज करते। हम कोई रमज़ान में कम नहीं खाते बल्कि मंथ ऑफ फास्टिंग को मंथ ऑफ फीस्टिंग कर दिया, और खूब खाते हैं। और वो खाते हैं जो पूरा साल नहीं खाते, या कि इतना खा लेते हैं कि उसके बाद कई महीने तक दिल ही नहीं करता। हाँ, ये नहीं है। अल्लाह के नबी कहते हैं ये सब्र का महीना है, रोको अपने नफ्स को। और सब्र की बेहतरीन किस्म क्या है कि अल्लाह के रास्ते में अपने आप को जमा लेना। सूरत आल इमरान की आखिरी आयत में उम्मत मुस्लिमा को एक सबक दिया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। अगर उम्मत बन के जीना चाहते हो तो सब्र करो अपनी इनफरादी ज़िंदगी पे, आने वाली मुश्किलात में, आजमाइशों में, तकदीर के फ़ैसलों पे सब्र करो। हो गया जो होना था, मिलना था जो मिल गया, तुम लड़ नहीं सकते, झगड़ नहीं सकते, कबूल कर लो और साबिरो इज्तमाई ज़िंदगी में सब्र करो। तुम्हें एक से दूसरे को तकलीफ़ पहुंचती है, सब्र करो। सास को बहू से, बहू को सास से तकलीफ़ पहुंचती है, सब्र करो। एक हमसाया दूसरे की वजह से आजमाया जाता है तो सब्र करो। तो लिहाजा खुद भी सब्र करना है और दूसरों से भी सब्र करवाना है। कि वह शहरुल मवासाती, ये हमदर्दी का महीना है। एक दूसरे के साथ गमखोरी करो, दूसरों के दुख बांटो। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि जिसने अपने मुलाजिम का काम हल्का कर दिया कि वो रोज़े से है, तो अल्लाह ताला उसको अजर देगा। हमदर्दी करें, और वाकई पैदा होती है हमदर्दी। अपना पेट खाली होता है तो दूसरों की भूख का अंदाज़ा होता है। खुद रातों को उठ के जागते हैं तो दूसरों की तकलीफ़ महसूस होती है। तो एक एक चीज़ को सुनते हुए अपने लिए नियत करते जाइए कि ये ज़रूर करना है। अभी तक आप देखिए कि हमने लैलतुल कदर में जागने की और उससे फ़ायदा उठाने की बात की। अपने लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इसकी तौफीक दे दे। फिर रात की तरावी की बात की, फिर इसी तरह आप देखिए कि नवाफिल को कसरत से पढ़ना है और फिर सब्र करना है। और सब्र ही बेहतरीन चीज़ है जिससे इंसान अपने दीन का इजहार करता है। और फिर शहरुल मवासा, हमदर्दी करनी। फरमाया कि इसमें मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। ये बात मैंने क्यों कही कि खूबसूरत है, कि मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। अभी पीछे हमने देखा कि ये महीना इबादत का और अल्लाह की रज़ा के काम करने का है। और जो वाकई मोमिन होते हैं वो इन दिनों में काम कम कर देते हैं, कमाने का, लेने का, देने का। लेकिन अल्लाह ताला उनके थोड़े में भी बरकत डाल देता है। और आज भी देखिए ये बात कितनी सच है। जब आप ग्रोसरी स्टोर्स पे जाते हैं तो ढेरों खजूरों के डिब्बे पड़े होते हैं, बेसन के ढेर लगे हुए हैं, चावलों की बोरियां। ये सब मोमिनों को फ़ायदा हो रहा है ना। यानी जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ आता है तो अल्लाह ताला उसको गैब से रिस्क देता है। और ये भी बात काबिले गौर है कि मोमिन का बढ़ता है, ख़राब काम करने वालों का कम हो जाता है। ज़रा सोचिए वो चीज़ें जो लोग अब खुशी से देखते हैं, लेते हैं, देते हैं। रमज़ान में कुछ परसेंट लोग तो काम कर ही देते हैं ना, उनका बिजनेस ठप होता है और नेकी की चीज़ों का बढ़ता है। लोग इस महीने में अनयूजुअल तरीके से रिलीजियस चीज़ें लेने लगते हैं। बाद लोग पूरे साल की चीज़ें इस महीने में लेते हैं। तो हम सब अपने आप को परख सकते हैं, क्या मेरा काम या मेरा कारोबार, और ऑफ कोर्स मर्दों का जो करते हैं, औरतों का डायरेक्ट तो नहीं ताल्लुक, लेकिन अगर तो इस महीने में मेरा काम बढ़ता है तो ये अल्लाह की तरफ से एक खुशखबरी है, अच्छे काम की दलील है। और अगर इस महीने में ठप है और चेहरे उतरे हुए हैं तो समझ लें कि कुछ बात जो है ऐसी है जो आम दिनों में भी नहीं होनी चाहिए। फिर आपने फरमाया जो शख्स किसी रोज़ेदार की इफ्तारी करवाता है इसके गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं और इसे दोज़ख़ से आज़ाद कर दिया जाता है और इसे रोज़ेदार के बराबर सवाब मिलता है और इससे इसके सवाब में कोई कमी नहीं होती। इतनी खुशखबरियां सुनी तो सहाबा किराम कहाँ चुप रहते। कहने लगे अल्लाह के नबी, अगर कोई रोज़ा इफ्तार करने कराने की ताकत ना रखता हो। आपको पता है कि वो गरीब लोग थे, एक खजूर भी खाते थे तो गुठली चूसते रहते थे, कहाँ दूसरों को खिलाएंगे और कहाँ। तो सवाल दिल में आ गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सवाब अल्लाह ताला एक खजूर खिलाने या पानी पिलाने या दूध का एक घूंट पिलाकर इफ्तारी कराने वाले को भी दे देता है। सुभान अल्लाह, बड़ी बड़ी दावतें नहीं। यहाँ एक छोटी सी बात कहूँगी कि वक्त इतना कीमती है इसमें कि अगर आप वाकई ऐसी इफ्तारियों से इज्तनाब करें कि जो आपका वक्त ले लें। बाज़ दफ़ा इफ्तारी कराने वाली खातून खुद रोज़ा नहीं रखती, फ़र्ज़ रोज़ा छोड़ा हुआ क्योंकि आज 50 लोग इफ्तारी पे आ रहे हैं। यकीन करें 50 का भी सब अजर नहीं मिलेगा अगर अपना फ़र्ज़ रोज़ा छोड़ दिया। खिलाना है तो उनको खिलाइए जिनके घरों में है ही कुछ नहीं। ठीक है कि हर एक के रोज़े का सवाब है, लेकिन खजूर से भी बात बन सकती है। जो भी काम हो वो इस तरह का हो कि जिसमें अपने फ़राइज़ गाफिल ना हो। और अगर इफ्तारियों के ऊपर और काम भी होने लगे, उसमें गुनाह के काम भी हों। यानी मैंने देखा कि ट्रेंड बढ़ने लगा कि अब अगर शादियां ब्याह भी होटल्स में होते हैं तो इफ्तारियां भी बाहर होने लगी। बुफे सिस्टम है, लोग वहाँ सारे ख़ानदान के लोगों को, जिसको भी दोस्तों को बुलाना होता है बुला लेते हैं। अब वो होटल इतना बड़ा है, अब वहाँ गए तो जी म्यूज़िक लग रहा है, अब म्यूज़िक है। होटल वालों से कहें तो कहते हैं हाँ म्यूज़िक बंद कर देते हैं, बांसुरी नहीं बंद कर सकते। ये मैंने सच्चा किसी जगह का वाक्य मुझे किसी ने सुनाया, पाकिस्तान के किसी होटल, बहुत बड़े होटल में इफ्तारी थी, तो म्यूज़िक चल रहा था और लोगों ने इतराज़ किया कि ये कुछ लोग होते हैं बेचारे ऐसे जो हर महफिल में के रंग में भंग डाल देते हैं। तो जब होटल वालों से कहा, कहा नहीं ये हमारी मैनेजमेंट का असूल नहीं, हम बांसुरी लगा देते हैं। तो मैंने जब ये बात सुनी तो मुझे इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बात याद आ गई कि एक दफ़ा अपने ग़ुलाम नाफ़े के साथ ऊँटनी पर सवार जा रहे थे तो दूर से बांसुरी की आवाज़ आई, तो इन्होंने अपने कानों में उंगलियां दे ली और कहने लगे कि जब ये आवाज़ बंद हो जाएगी तो मुझे बताना। फिर जब दूर चले गए, आवाज़ आनी बंद हो गई, तो फिर कानों से उंगलियां निकाली, फिर अपने ग़ुलाम से कहा कि एक बार मैं अल्लाह के नबी सल्लम के साथ सफ़र में था जैसे तुम आज मेरे साथ हो, और दूर से बांसुरी की आवाज़ आई तो अल्लाह के नबी ने भी यही किया था और मैंने आज उसी सुन्नत को पूरा किया। तो बात यही है कि सवाब लेने के लिए काम करना है तो अच्छे तरीके से करना है। हम रूहानियत में नहीं रहते, हम वो करते हैं जो सब कर रहे हैं, रस्म बन गई, हाय अब उसकी भी इफ्तारी करनी है, अब उसकी भी करनी है, अब लोगों से खा लिया, अब हमें भी खिलाना है, क्या फ़ायदा? आप इस तरह से नहीं, खुशी है दिल की और बात, लेकिन रस्म नहीं। ख़ास तौर पर ख़ानदानी सिस्टम में तो बहुत ही रसूमात होती हैं, अब एक भाई की पक गई इफ्तारी, अब दूसरे के होगी, फिर मिक्सिंग होती है, बेपर्दगी भी हो जाती है, बेतकल्फी भी है, तो कोशिश करें कि नेकियां ज़ाया ना हो, शैतान ताक रखता है कि हमारी नेकी ज़ाया हो जाए। फिर फरमाया कि इस महीने का इब्तदाई हिस्सा रहमत, दरमियाना हिस्सा मगफरत और आखिरी हिस्सा दोजख से आज़ादी है। ये मरूफ रिवायत है, लेकिन ये हिस्सा बास जगह आता है कि ये ज़ईफ़ भी है। हमारे यहाँ एक मारूफ बात है कि पहले हिस्से में रहमत मांगो और दूसरे में मगफरत और तीसरे में दोजख, तो ये पूरा ही महीना इंशाल्लाह ताला रहमत मगफरत और दोजख से आज़ादी की बात है। इसके लिए अलग से अगर आप ना भी कर सकें तो पूरा महीना ही इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की तरफ से ये रहमतें हो सकती हैं। फिर फरमाया जो शख्स इस महीने में अपने मुलाजम पर तख़फीफ़ करता है, कमी करता है, यानी उसका काम कम कर देता है, अल्लाह ताला उसे बख्श देता है और इसे दोजख से आज़ाद कर देता है। फिर इसके बाद आखिर में अब एक होमवर्क दे रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लम, फरमाया इसमें चार काम ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करो। आप तैयार हैं? अच्छा जी, अच्छा। कहा दो कामों के ज़रिए तुम अपने रब को राज़ी करोगे, यानी चार कामों में से दो काम ऐसे हैं जिनसे तुम्हारा रब राज़ी हो जाएगा। करना चाहते हैं रब को राज़ी? अल्लाह की रज़ा वाकई कोई बड़ी चीज़ है? यही तो है जिसके लिए एक इंसान दुनिया भर में ज़िंदगी भर तड़पता है, नमाजें, रोज़े, हज, ज़कात, भागा दौड़ी इधर से उधर, ही क्या है कि अल्लाह तू राज़ी हो जाए। और यही तो पुकार है जिसके लिए एक ईमान वाला जब इस दुनिया से जाता है तो या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना इरजिला रब्बी की राधियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐसा बंदा जो सारी ज़िंदगी रब की रज़ा पाना चाहता है, मौत के वक्त उसकी रूह को ये पुकार सुना दी जाती है कि चलो इस हाल में कि अल्लाह तुमसे राज़ी है और तुम उससे राज़ी हो, चलो मेरे नेक बंदों में दाखिल हो जाओ, जन्नतियों में हो जाओ। बंदा पहले रब से राज़ी होता है फिर रब उससे राज़ी होता है। अगर आज हम अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं है ना, शिकवे हैं, किस्मत के शिकवे हैं, ये क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ, तो रब राज़ी नहीं होगा। अगर हम सब चाहते हैं ना कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए तो उसके लिए पहला स्टेप क्या है कि हम अल्लाह से राज़ी हो जाएं। पूरे यकीन से कहिए कि रदीतु बिल्लाहि रब्बम, मैं अपने अल्लाह के रब होने पर राज़ी हूँ, जो उसने मुझे दिया ये तो मोर देन एनफ है, मैं तो ये डिज़र्व नहीं करती थी। बाज़ लोग कभी भी अपने हालात से मुतमईन नहीं होते, रोते धोते ही दिखते हैं, ये नाशुक्री है, कुफ्र करते हैं। मुतमईन हो जाए, नहीं मिला नहीं मिला, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हालिन वाउज़ु बिल्लाहि मिन हाल अहलि नार, कि अल्लाह हर हाल में तेरा शुक्र है, सिर्फ़ एक हाल से पनाह मांगते हैं कि हमें जहन्नुम में ना डालना। तो अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि देखो दो कामों के ज़रिए तुम अल्लाह को राज़ी करोगे और दो कामों के बग़ैर तुम्हारे लिए कोई चारा ही नहीं, यानी दो काम मस्ट करने ही पड़ेंगे, तुम बच नहीं सकते अगर वो काम नहीं करोगे। जिन दो कामों के ज़रिए तुम अपने रब को राज़ी करोगे इनमें से एक क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देना, सिद्क के दिल से अल्लाह को एक मानो, सारे माबूदों को तोड़ो, सारे ताहूतों को तोड़ो, सबसे पहले तो अपने अंदर के शैतान को मारो, नफ्स को तोड़ो जो तुम्हें अल्लाह के रास्ते में आने नहीं देता, वो मुआशरे, वो कल्चर, वो प्रेशर्स अपने ऊपर से उतार फेंको जो तुम्हें तुम्हारे रब की तरफ नहीं आने देते, वो बोझ अपने कंधों से उतारो जो लोगों के ले लेके फिरते हो, लोगों की बातों का डर, लोग क्या कहेंगे, लोगों के लिए बड़ा बनना है, लोगों को दिखाने के लिए हजारों लगा देना, ये सब चीज़ें निकालो और कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। ये एक छोटा सा कलमा है, लेकिन क़यामत के दिन इतना भारी होगा कि इंसान के गुनाहों के पलड़े छुप जाएंगे और इससे कलमे का वज़न जो है ये उससे ज़्यादा होगा। असल तो मांगता भी तो यही है, रब यही तो पुकारता है। इसीलिए आप देखिए कि इस साल जो हम दौरे कुरान करवा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, तो उसका थीम ही अस्मा व सिफात है, अल्लाह के नाम और उसकी सिफात। क्यों? कि रब को पहचानेंगे तभी तो उसकी बात मानेंगे ना। कि आप कभी किसी ऐसे बंदे की बात सुनते हैं या उसकी केयर करते हैं जिसको आप कुछ ना समझें? सुनना क्या, आप उसकी बात को कोई अहमियत नहीं देंगे? हमारा मुलाजम हमें कुछ कहे और हमारा बॉस हमें कुछ कहे, क्या दोनों बातों को एक ही एंगल से सुनते हैं? मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह की कदर है तो ही बात बनेगी। वो तो शिकवा करता है, वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, लोगों ने वैसी कदर नहीं की अल्लाह की जैसा कि उसका हक था। ऐसा लगता है मुझे कि जैसे अल्लाह ताला सामने आ गया, हमारे ऊपर एक चोट डाल दी, हमारे हालात हमारे सामने खोल के रख दिए कि देखो जरा जिससे लेते हो मानते हो उसकी, जिसकी ज़मीन पर रहते हो क्या उसके हुक्मों के मुताबिक भी जीते हो? तो फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही, और दूसरा इससे बख्शिश तलब करना, आजिज़ी का इजहार है ना। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानक इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। इस जुमले में ये दोनों बातें आ जाती हैं जिसको हम सब आयत करीमा कहते हैं। मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम ने पढ़ा, मछली ने पेट से बाहर निकाल दिया। कभी आप इसके तर्जमे पे गौर करें, मांगा क्या है? खुदा न खास्ता हम में से कोई ऐसी मुश्किल में होता है तो हम तो ये कहते ना, अल्लाह ताला मछली के पेट से निकाल, अल्लाह ताला मछली के पेट से निकाल, अल्लाह ताला क्यों डाला है? हम तो सीधा सीधा मांगना चाहते हैं ना। वो लोग रूट कॉज पे जाते थे, ला इलाहा इल्ला अंता, अल्लाह तेरे सिवा और कोई नहीं है। अल्लाह की कुदरत का इजहार, उसकी बड़ाई का एहसास। इन्नी कुंतु मिन ज़ालिमीन, कि जो मछली के पेट में गया हो ना, वाकई आई डिज़र्व इट, ये मैं ही था। अपने गुनाहों का इतराफ़, जो बंदा अपने गुनाह का इतराफ़ कर लेता है फिर अल्लाह ताला उसको बचाता है। जैसे ही जैसे आप किसी को कुछ कहें और वो आगे से और डिफेंस करे, डिफेंड करे ना, नहीं नहीं मैंने तो नहीं किया, मैंने ऐसे नहीं किया, तो आप और जोर देते हैं, नहीं ऐसा हुआ था ऐसा। और अगर आप किसी से बात करने रख लोगे, हाँ जी भाई मैंने ये किया था, आगे क्या कहेंगे? बात कुछ नहीं रहेगी ना। यानी आप देखिए कि वाकई जब इंसान हार मान लेता है ना, तो अगला फिर नहीं 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 मेरा ये मतलब नहीं था। दो लोग झगड़ते हैं और एक बंदा कह देता है कि आई वॉज रॉन्ग, तो दूसरा खुद ब खुद कहने लगता है नहीं मेरा ख्याल है कि गलती मेरी भी थी। और अगर एक है तुमने ये किया, वो कहता है तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तो बात नहीं बनती ना। तो इंसानों के साथ मामले हों तब भी, लोगों के साथ मामले हों तब भी यही करें। अल्हम्दुलिल्लाह कभी मौका नहीं मिलता, लेकिन कभी जैसे लाड में भी कोई बात होती है ना, तो मैं अपने मियाँ से कुछ कहूँ ना, आपने ऐसा किया है, यानी कुछ भी कहूँ जो उन्होंने किया हो या ना किया, तो ये क्या कहते हैं, अफसोस मुझे तुम पे अफसोस हो रहा है, तुम्हें ऐसा बुरा हस्बैंड मिला है, ये ऐसा हस्बैंड है तेरा। फिर मैं एकदम दूसरी साइड पे आती हूँ, कहता है क्यों आप कौन होते हैं मेरे हस्बैंड को कुछ कहने वाले? बात ख़त्म हो जाती है। अगर खींचेंगे तो कहाँ लेके जाएंगे, इधर भी रस्सा खींचेगा उधर भी खींचेगा। अल्लाह ताला हमें यही सिखाता है, मान जाओ अपने गुनाहों को, मान लो मेरे ऊपर जो मुसीबत आई है ये मेरे ही वजह से है। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन इल्ला बिमा कसबत अईदीकुम। अगर इसका यकीन आ जाए दुनिया सबसे शिकवे भूल जाए, हम सारी दुनिया से नाराज़ रहते हैं, नहीं नाराज़ रहते तो अपने आप से नहीं रहते। तो गुनाहों की बख्शिश, और ये कब निकलती है? जब बंदे को अपनी हस्ती का यकीन आता है। खुद पसंद लोग, तकब्बुर में बड़े हुए लोग कभी अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगते। इसके लिए इंसान को वाकई अपने आप को नीचे लाना पड़ता है। और फिर फरमाया वो जिन दो कामों के बगैर तुम्हारे लिए कोई चारा नहीं, इसके बगैर तुम बच ही नहीं सकते, उनमें से एक ये है कि तुम अल्लाह ताला से जन्नत का सवाल करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुकल जन्ना, और दूसरा ये कि तुम दोजख से पनाह मांगो, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। है ना ज़रूरी कि हम जन्नत से बेनियाज रह सकते हैं, और क्या जहन्नम से बेखौफ रह सकते हैं? तो मांगना चाहिए, सुबह शाम मांगना सिखाया, 7 बार सुबह फजर के बाद या सुबह की दुआओं में, शाम के बाद यानी असर से मगरिब के बीच में या उसके बाद आपने फरमाया जो कहता अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, तो अल्लाह ताला उसको आग में नहीं डालेगा। जहन्नुम भी कहती है अल्लाह ताला ये सुबह शाम मुझसे पनाह मांगता है, इसको ना भेजना मेरे अंदर, यानी इसको मैं इतनी बुरी लगती हूँ तो फिर इसको ना भेजना मेरे अंदर। और इसी तरह बात जो है तो मैं अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुकल जन्ना, जो बंदा सुबह शाम ये पुकारता है तो जन्नत कहती है अल्लाह ताला देख ये सुबह शाम मुझे पुकारता है तो तू इसको मेरे अंदर ले आ, ये तो इतना अच्छा था चाहने वाला है। तो हमारी ज़ुबानों पे ये लफ्ज़ रहेंगे। फिर आपने फरमाया जो शख्स रोज़ेदार को पानी पिलाएगा अल्लाह ताला इसे मेरे हौज़ से पानी पिलाएगा, इसे जन्नत में दाखिल होने तक प्यास नहीं लगेगी। और रमज़ान में इफ्तारी के वक्त अगर इस बात को याद कर लें कि पानी किसी को पिलाना और वो हौज से अल्लाह ताला उसको पिलाएगा तो कितनी बड़ी बात है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि कभी भी मुझे कोई पानी दे और मैं बात कर सकूँ, नहीं तो मैं दिल में ज़रूर कहती हूँ कि अच्छा आपने पानी पिलाया तो अल्लाह ताला आपको हौज़ कौसर का पानी पिलाए। दुनिया की प्यास बुझाई है, आखिरत की बुझ जाए। तो बात ये है कि इस एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लम ने हमें एक पैकेज दे दिया। आप देखिए गुनाहों की माफ़ी की भी बात हो गई और इंसान को अल्लाह की बड़ाई की भी बात बता दी गई। अब करना हमने है, करें क्या, क्या बस बात हो गई और ख़त्म? नहीं, कोई नेकी का काम, कोई इरादा। जैसे कि हदीस में आता है कि जब रमज़ान का महीना आता है तो एक फरिश्ता आके पुकार लगाता है या बागी अल खैर अकबिल अकबिल, ए भलाई को चाहने वाले, ए नेकी के चाहने वाले, सीकर ऑफ द गुड थिंग्स, भागो जल्दी करो आगे आओ, यानी मौका पकड़ लो, मौका हाथ में आया है जल्दी से ले लो। और इसी तरह एक फरिश्ता कहता है ए शर को चाहने वाले, थम जा रुक जा, शर्मगार, यानी अब तो बुराई छोड़ दे। तो हम सब के सामने मौका मौजूद है, बहुत सारी नेकियां हैं, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। और आप देखिए कि ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हम रमज़ान के बारे में बात सुन और सुना रहे हैं, अगर हम ना भी सुनेंगे तो बात तो फिर वही है जो होगी।